हेलो,
सलामकुम आरिफ हसन साहब।
बोल रहा हूँ।
आरिफ साहब, आफ्ताब बोर्ड का बात कर रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका से। कैसे आपसे? ठीक ठाक।
मैं अच्छा हूँ, खैरियत।
आरिफ साहब, जब भी बारिशें होती हैं, खासकर कराची में, तो कराची डूब क्यों जाता है?
कराची डूबता इस वास्ते है क्योंकि उसके जो हुक्मरान हैं वो नालायक हैं, उसके जो इदारे हैं उनमें जान नहीं है, उनकी टेक्निकल नो हाउ डिप्लीट हो चुकी है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो हैं वो शहर की मुनासिबत से सही मायनों में उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो असल वजह तो ये है कि कराची डूबता है। अब ये तो नालायकी की वजह है, वरना ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है ये। अब अगर हम वजूहात पे जाते हैं अलावा नालायकी के और अलावा लापरवाही के, तो टेक्निकल वजूहात भी हैं बहुत सारे। कराची का जो निज़ाम है नेचुरल ड्रेनेज का, वो नालों के ज़रिए है, और ये नाले जो हैं दो दरियाओं में जाके गिरते हैं। बेशतर नाले जो हैं अब सुएज लेके चलते हैं, स्टॉर्म
जी
वाटर नहीं, सारे हर वक्त उनमें सुएज बहता है।
जी जी
और जो बेशतर नाले हैं वो मेरा ये ख्याल है कि कोई 20-22 साल से साफ नहीं हुए,
ओके
जिसकी वजह से उनमें कूड़ा जमा होता रहा है, उन्हें इस्तेमाल किया गया है कूड़ा फेंकने के लिए,
ओके
और वो कूड़ा अब 10-12 फुट गहरा है और इतना सख्त हो चुका है कि उन नालों के कूड़े के ऊपर बच्चे अब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं।
ओके
तो इन नालों को साफ किए बगैर पानी का निकास नहीं हो सकता,
तो इस
एक तो
सिचु
वजह ये
जी
है।
जी जी
अब उसको साफ करने के लिए हैवी मशीनरी चाहिए, उसको साफ करने के लिए पैसा चाहिए, और इस सारे कूड़े को अगर निकालने में कामयाब भी होते हैं तो उसको कहीं ले जाके फेंकना भी है, और ये इतना कूड़ा है कि इसके फेंकने के लिए जगह का इंतजाम करना आसान नहीं होगा। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि कराची के समंदर के आउटफॉल्स हैं, जहां बड़े नाले जो छोटे नालों का पानी जमा करके समंदर में लेके जाते हैं, वो भी सब एनक्रोच हो चुके हैं। मसलन जो आपके दो बड़े नाले हैं जो सोल्जर बाजार और सदर से निकल के जाते हैं समंदर को चीना क्रीक में, उनको मायकोलाची बाईपास रोक रहा है और उनको केपीटी की हाउसिंग सोसाइटी रोक रही है। तो ये कच्ची आबादी नहीं है, ये पक्की आबादी है जो रोक रही है। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा नाला है महमूदाबाद नाला, वो जाके गिरता था गिजरी क्रीक में, उसका कोई 1.5 किलोमीटर का एस्चुरी थी। डिफेंस सोसाइटी ने उस पे सारे प्लॉट बना लिए हैं, जिसके नतीजे में वहाँ से पानी बहुत मुश्किल से निकलता है, तो इस वास्ते फ्लडिंग होती है। इसी तरह से और भी जगहें हैं जहां आउटलेट्स जो है समंदर को वो डेवलपमेंट की वजह से रोके गए हैं, और जहां मुसलसल लैंड एनक्रोचमेंट हो रही है उन इलाकों पे। तो ये इसी बात से मैं कह रहा था, ये हुक्मरान जो है उनकी नालायकी और लापरवाही की वजह है।
तो अरे साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस सूरत में भी, जो कि बजाहिर बड़ी खराब नजर आती है, हद दर्जे की मतलब मिसमैनेजमेंट जो भी नजर आती है, आप एज अ सोल्यूशन वाइज आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त भी अगर तमाम नालों को जो कराची में मौजूद है साफ कर दिया जाए तो हालात इतने बुरे नहीं होगी या फ्लडिंग नहीं होगी? इज दैट व्हाट यू सजेस्टिंग, अगर मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए?
बेहतर होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि फ्लडिंग नहीं होगी, बेहतर होगी, क्योंकि हुआ ये है अब क्योंकि ये नाले खत्म हो गए हैं तो आपकी जो सड़कें हैं वो नाले बन चुकी हैं, और सड़की पानी लेके और वो आउटफॉल्स तक जाती हैं, तो नाले साफ हो जाएंगे तो लाजमी बात है। बेहतर होगी सूरत हाल, मैं ये नहीं कहता कि सही होगी,
इसके अलावा
सही
भी
तो जब हो।
मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का शहर, तकरीबन 20 मिलियन, 22 मिलियन, 2 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग जो भी
जी
हैं, उसमें क्या यही सिचुएशन है? लाइक ओवरऑल हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन या सुएज, मतलब जो गटर का सिस्टम है, पूरा नेटवर्क है, आई डोंट थिंक उसकी क्या सिचुएशन है इस वक्त, लेकिन उसको दुरुस्त करने की भी जरूरत तो होगी बेशक, राइट?
देखिए, आपका जहाँ तक स्वेज का ताल्लुक है, आपका सारा स्वेज इन नालों में जाता है,
राइट
और उसकी वजह ये है कि ये प्लान किया गया है इस तरह के ये नालों में जाए, ये एक्सीडेंटल नहीं है।
ओके
और जब एहसास हुआ कि नहीं जाना चाहिए तो इसकी रीप्लानिंग की गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंसल्टेंट्स थे जिन्होंने रीप्लानिंग की गई, मगर उन्होंने ये इन कंसिडरेशन लिया ही नहीं कि स्वेज सारा नालों में जाता है। उन्होंने ट्रंक सुअर्स बनाए सड़कों के साथ साथ, उनमें कभी स्वेज ही नहीं गया। और क्योंकि उन ट्रंक सुअर्स को इन्होंने कनेक्ट किया ट्रीटमेंट प्लांट से, चुनाचे ट्रीटमेंट प्लांट में भी स्वेज नहीं गया ट्रीटमेंट के लिए,
राइट
और हमने इस पे अरबों रुपए खर्च किए थे जिससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ।
तो दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि यहाँ पे जनरली जो मैं देखता हूँ यहाँ पे अमेरिका में या शहरों में जो निजाम है सूरज का, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, तो सूरज जो है जनरली कहीं ओपन, अगर आप उसको प्लान करते हैं तो कहीं ओपन नहीं होना चाहिए, और जो नाले हैं ऑब्वियसली वो सिर्फ बारिश के या तूफानी बारिश के जो पानी है उसके लिए होते हैं, उसमें वो सूरज तो ओपन टेक्निकली कहीं नहीं होना चाहिए, राइट?
नहीं, नहीं होना चाहिए, मगर इब्तिदा के लिए देखे ना, ये सारी चीजें एक साथ तो ठीक हो नहीं सकती।
राइट
हमें कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे कि जो दुश्वारियां और तकलीफ है लोगों को बारिश की वजह से, उसको तो हल करें। उसके बाद हम जो हैं ये ट्रंक सुअर्स नालों के साथ साथ डाल सकते हैं टू पिक अप द स्वेज, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर असल मसला तो इस जो आपके 10-10 फुट कई मिलियन क्यूबिक मीटर जो आपका कूड़ा जमा हुआ हुआ है इन नालों में, जो साफ नहीं हुआ 20-25 साल से, ये उसको उठाना है।
अच्छा, ऑपरेशनली भी अगर आप यही सॉल्यूशन हम मान लें कि इनिशियली, मतलब टू स्टार्ट टू बिगिन समवेयर, अगर यही सॉल्यूशन है कि नालों को साफ कर लिया जाए फौरी तौर पे, और ये जो बड़े नाले जो डंप होते हैं उनकी इंक्रोचमेंट को खत्म कर दिया जाए, तो ऑपरेशनली स्पीकिंग आपके नजरिए में
जी
कितना बड़ा टास्क है ये, अगर आज कोई हुकूमत करना शुरू करे या जो भी लोग करना शुरू करते हैं, तो कराची जैसे शहर के लिए कितना बड़ा टास्क है ये ऑपरेशनली?
देखें, अगर ये आबादियों को ना सरकाएं, मसला तो ये भी है, अगर ये लिमिट कर दें सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा के, इन नालों को साफ करना है और आगे चल के मेंटेन करना है, ठीक है ना, सिर्फ साफ करना तो
राइट
नहीं है, मेंटेन भी तो करना
बिल्कुल
है
बिल्कुल
बाद में, अगर सिर्फ ये कर लें तो मेरे ख्याल में इसे लगेंगे कोई 5 साल।
ओके
5 साल जिसमें पैसे मशीनरी मौजूद हो, अभी वर्ल्ड बैंक का भी इन्होंने कर्जा लिया है, मेरे ख्याल में $2 मिलियन का है, और ये इससे कम में साफ नहीं होगा, इस कम अरसे में, अरसा इतना ही लगेगा 5 साल। शुरू
ओके
करें बड़े नालों से, फिर आहिस्ते आहिस्ते जो उनके कनेक्टिंग नाले हैं उन पे आए। आप ये भी देखें, बड़े नाले आपके, जहाँ तक मुझे याद है, आपके बड़े नाले जो हैं वो 63 हैं,
ओके
और आपके 2 बड़े दरिया हैं, दरिया तो नहीं है खैर, पानी तो उनमें सिर्फ उसमें आता है बरसात में, लियारी और मलीर। तो बड़े दरियाओं को साफ करने की तो इतनी जरूरत नहीं है इस वक्त, मगर ये जो नाले उनमें आके गिरते हैं, बड़े नाले, उनको साफ करने की जरूरत है।
अच्छा,
फिर
दूसरा
छोटे छोटे नाले बाद में साफ होते रहेंगे। अच्छा,
राइट
एक और मसला है, जो कराची के शुमाली इलाके हैं वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई है, जैसे बहरिया टाउन बना है और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हुए हैं,
जी
इन इन इलाकों की जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस थी उनको लेवल आउट किया गया है, तो उसकी वजह से भी जब बारिश होती है और किसार की पहाड़ियों से पानी आता है तो उसे नारे नहीं मिलते क्योंकि वो रहे नहीं है।
तो उस डेवलपमेंट का
तो
सारा रन ऑफ जो है वो साउथ में आता है, आप ये कह रहे हैं।
वो साउथ में आ जाता है फिर।
ओके
ये भी मसला है, इसको भी टैकल करना पड़ेगा। तो एक लार्ज ड्रेनेज प्लान जब तक नहीं बनेगा जो इस मसले को स्टेजेस में लेगा, मेरा नहीं ख्याल ये मसला हल होगा।
अच्छा, दूसरा आरिफ साहब
और
ये कि जब करना तो है,
जी
एक तो आपने ऑपरेशनली बता दिया कि अगर सही तरीके से उसको करना शुरू करें तो तकरीबन 5 साल लग सकते हैं। एक जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पॉइंट इसमें बहुत जरूरी है, एक तो ऑब्वियसली किसी की भी कमिटमेंट चाहिए करने के लिए, फर्ज करें हमारे पास कमिटमेंट मौजूद है करने के लिए, लोग तैयार हैं, तो करने का खर्चा कितना होगा आपके अंदाजे में और ना करने का खर्चा क्या होगा,
देखें,
और ना करने की कीमत क्या चुकानी
खर्चा
पड़ेगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं।
खर्चा अजीब व गरीब चीज होती है। अगर आप वर्ल्ड बैंक के पैसे से पैसा लगाएंगे और उनके कंसल्टेंट्स लगाएंगे तो आपके 100 रुपए होंगे, आप उनके बगैर करेंगे तो शायद 30 ही रुपए लगे। तो
ओके
ये भी तो मसला है,
ओके
और ये हम आजमा चुके हैं माजी में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो मेरा अपना तो ख्याल ये है, जो 2 मिलियन US डॉलर्स इन्होंने दिए हैं वो शायद काफ़ी ना हो। अगर ये खुद करेंगे शायद 1 मिलियन US डॉलर्स और इजाफाई खर्चा होगा शायद।
तो 2 से 3 मिलियन डॉलर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कि
हाँ, मेरा अपना ख्याल है,
इतने में कराची का ये जो नालों का मसला है काफी हद तक हल हो सकता है।
इनके बड़े नालों का नाले जो हैं वो साफ हो जाएंगे,
अच्छा,
उनकी जो एम्बैंकमेंट्स बन जाएंगी।
और ना करने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी?
ना करने की कीमत यही है जो आप देख रहे हैं, लोगों के घर डूबेंगे, उनकी गाड़ियां तबाह होंगी, उनके बच्चे मरेंगे,
तो कीमत तो दोनों तरफ
लोग
चुकानी
डूबेंगे।
है,
जी बिल्कुल सही है,
या शायद
दोनों
ना करने की
दोनों
ज्यादा
तरफ।
चुकानी पड़ेगी।
तो शहर ही कहाँ रहेगा,
राइट
ठीक है ना? अब कहाँ है शहर? 8-8, 9-9 घंटे ट्रैफिक रुकी रहती है, लोग घर नहीं जा सकते, गाड़ियाँ बह जाती हैं, घर गिर जाते हैं, ए लॉट ऑफ पीपल डाई, मरते हैं लोग। और ये अवॉइडेबल है, ये सारा मरना, सारी तबाही अवॉइडेबल है।
तो जनरली आपके नजर में, आपने काफी अरसे से, सालों से पाकिस्तान में ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड पे काम किया है, लेकिन ऑब्वियसली सियासत को भी ऑब्जर्व किया है आपने। एक तो मसला होता है कि ऑपरेशनली आपके पास कैपेसिटी या कॉस्ट बेयर करने के जरिए हैं या नहीं है, वो तो अलग बात है। दूसरा, सियासत में जनरली आप वहां पे क्या चैलेंज आपको नजर आता है, क्यों नहीं कर पा रही कोई भी हुकूमत या अब तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन आई हैं?
देखिए, मसला ये है कि जो सियासत है कराची की वो आम फहम सियासत है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी और वोट की सियासत है। कॉन्स्टिट्यूएंसी और वोट की सियासत से ये मसला हल नहीं हो सकता। इससे आगे बढ़ना होगा अगर मसला हल करना है, तो कराची से मोहब्बत करके, प्यार करके ये भूल जाना है कि हमें इतने वोट मिलेंगे, उसको इतने वोट मिलेंगे। अगर ये नहीं हो सकता तो कराची बेहतर तभी बनेगा जब सेंटर में, लोकल गवर्नमेंट में और प्रोविंस में एक ही पार्टी की हुकूमत होगी, और वो होगी नहीं। तो ये कराची को इस्तेमाल करते हैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। और फिर उसके अलावा ये भी मसला है जो कि खासा सीरियस मसला है कि कराची का रेवेन्यू बहुत है, कराची की मुलाजिमतें बहुत हैं, तो इन पे भी कब्जा करना है। तो इसके लिए सियासत खेली जाती है, यानी शहर जो 78% सिंध की फॉर्मल सेक्टर जॉब्स यहाँ हैं, तो लाजमी बात है फिर उसके लिए तो सियासत खेली जाएगी। ये मसला है।
तो आई मीन दैट्स आई हेट टू से दिस, लेकिन जनरली आपकी बातों से लग नहीं रहा कि कोई ऐसी उम्मीद है बेहतरी की।
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर कराची के लोग इकट्ठे हों बड़े पैमाने पे, जिसमें ताजिर हों कराची के ख़ास तौर से, हर बाज़ार के एसोसिएशन्स हैं शहर में, वो एसोसिएशन्स हों, आपकी जो भी बची खुची ट्रेड यूनियंस रह गई हैं वो हों, आपके एकेडमिक लोग हों, तो मेरे ख़्याल में और एक बड़ा महाज बनाया जाए, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि उसका असर ज़रूर होगा। मगर इसके लिए जो हिम्मत चाहिए, जो वक्त चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, और जो खौफ है इस किस्म की चीज़ें करने का, उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, वो आसान काम नहीं है।
अच्छा, एक बात क्विकली, एंड आई एम श्योर यू नो इट अ लॉट मोर देन आई डू, एक तो हमारी जब भी ये फ्लड्स वगैरह होते हैं तो एक तो प्रॉपर्टी या लाइफ डैमेज हम देखते हैं कि फौरी तौर पे लोगों को नुकसान होता है, लोगों की जाने जाती है, अनफॉर्चुनेटली लोगों के माल को नुकसान होता है। इसके आफ्टरमाथ में भी जब इस किस्म का, और आप सूज आपको पता है कि भरा पड़ा है नालों में, तो हेल्थ उसके तो हैजर्ड तो बारिशों के काफी दिनों बाद तक रहते हैं बीमारियों की सूरत में, राइट?
बहुत अच्छे रहते हैं, और ये सबसे बुरा जो मौसम होता है खास तौर से डायरिया के बारे में हवाले से, तो वो जो है वो इसी मौसम में होता है बारिश के बाद, ये बच्चे खास तौर से बीमार होते हैं और बहुत अमवात होती है इसके नतीजे में, और अस्पताल भर जाते हैं इनसे, डिहाइड्रेशन बहुत है,
right.
तो ये मसाइल हेल्थ के हैं। इसमें मच्छर, मक्खियाँ, गंदगी, और वो सब जगह होती है, मार्केट्स में होती है जहाँ सब्जियाँ बिकती हैं वहाँ होती है, जहाँ गोश्त बिकता है वहाँ होती है, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि ये देखभाल करें खरीद फरोख्त की, खाने की चीज़ों की, इतने बड़े शहर में वो कर नहीं सकते क्योंकि वो इदारा भी तबाह हो चुका है।
right.
छोटे शहर के लिए ये इदारे ठीक थे, इतने बड़े शहर के लिए नहीं है।
right.
इतने बड़े शहर को डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए।
hmm.
और जो यूनियन काउंसिल है उसको ऑटोनोमस होने की जरूरत है।
hmm.
फिर जाके इन मसाइल का हल हो सकेगा, सेंट्रलाइज तरीके से नहीं होगा।
चले, ऑन दैट नोट आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच।